ಅದೇಶ ಕಾಲೇಯದ್ದಾನಮಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ ಅಸತ್ಕೃತಮವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾರಿತಂ.
ಜೋ ದಾನ ಬಿನಾ ಸತ್ಕಾರ ಕೆ ತಥಾ ಅವಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಅಯೋಗ್ಯ ದೇಶ ಔರ್ ಕಾಲ ಮೇ ಕುಪಾತ್ರ ಕೋ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ವಹ ದಾನ ತಾಮಸ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಅಸತ್ಕೃತಂ ಅವಜ್ಞಾತಂ. ತಾಮಸ ದಾನ ಅಸತ್ಕಾರ ಔರ್ ಅವಜ್ಞಾ ಪೂರ್ವಕ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯ ಕೆ ಪಾಸ್ ಕಭಿ ದಾನ ಲೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಜಾಯೆ ತೊ ವಹ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಉಸ್ಕೋ ಉಲಾನಾ ದೇಗಾ ಕಿ ದೇಖೋ ಪಂಡಿತ್ ಜೀ, ಜಬ ಹಮಾರಿ ಮಾತಾ ಕಾ ಶರೀರ ಶಾಂತ ಹುವಾ ತಬ ಆಪ್ ಆಯೆ ನಹೀ, ಪರಂತು ಕ್ಯಾ ಕರೇ, ಆಪ್ ಹಮಾರೇ ಘರ್ ಕೆ ಗುರು ಹೋ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ಹಮೇ ದೇನಾ ಹೀ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಇತನೆ ಮೇ ಹೀ ಘರ್ ಕಾ ದೂಸರಾ ಆದ್ಮಿ ಬೋಲ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ತುಮ್ ಕ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೆ ಝಂಝಟ್ ಮೇ ಪಡ್ತೇ ಹೋ, ಕಿಸಿ ಗರೀಬ್ ಕೋ ದೇ ದೋ ನಾ, ಜಿಸ್ಕೋ ಕೋಯಿ ನೀ ದೇತಾ ಉಸ್ಕೋ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ವಹಿ ದಾನ ಹೈ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೋ ತೊ ಕೋಯಿ ಔರ್ ಭೀ ದೇ ದೇಗಾ, ಪರ್ ಬೇಚಾರೆ ಗರೀಬ್ ಕೋ ಕೌನ್ ದೇಗಾ. ಪಂಡಿತ್ ಜೀ ಕ್ಯಾ ಆ ಗಯಾ, ಯೇ ತೊ ಕುತ್ತಾ ಆ ಗಯಾ, ಥೋಡಾ ಟುಕಡಾ ಡಾಲ್ ದೋ ನೀ ತೊ ಭೋಂಕ್ತಾ ಫಿರೇಗಾ, ಆದಿ ಆದಿ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಕಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಯಹ ದಾನ ತಾಮಸ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಅದೇಶ ಕಾಲೆ ಯದ್ ದಾನ, ಮೂಢತಾ ಕೆ ಕಾರಣ ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಅಪನೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಹೀ ಜಸ್ತಿ ಹೈ. ಜೈಸೆ ದಾನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಜರೂರತ್ ಹೈ, ಜಬ್ ಚಾಹೆ ತಬ್ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಜಬ್ ಕಿಸಿ ವಿಶೇಷ ದೇಶ ಔರ್ ಕಾಲ ಮೇ ಹೀ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗಾ ತೊ ಕ್ಯಾ ಯಹಾಂ ಪುಣ್ಯ ನಹೀ ಹೋಗಾ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಮುಕ್ ಸಮಯ ಆಯೇಗಾ, ಅಮುಕ್ ಪರ್ವ ಆಯೇಗಾ, ಇಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೈ, ಅಪನಿ ಚೀಜ ಖರ್ಚ ಕರ್ನಿ ಹೈ, ಚಾಹೆ ಕಭಿ ದೇ ದೋ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಕಾ ಅನಾದರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕರ್ಕೆ ದಾನ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಕಾರಣ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಕಾ ಮಹತ್ವ ನಹೀ ಹೋತಾ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ ರೂಪಿಯೋ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ, ತಾಮಸ ದಾನ ಅಪಾತ್ರ ಕೋ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯ ಕೈ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ತರ್ಕ ವಿತರ್ಕ ಕರ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಕಾ ವಿಚಾರ ನಹೀ ಕರ್ತೆ. ಜೈಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ದೇಶ ಕಾಲ ಔರ್ ಪಾತ್ರ ಕಿ ಬಾತೆ ಯೂ ಹೀ ಲಿಖ ದಿ ಗಯಿ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಯಹಾಂ ದಾನ ಲೇಗಾ ತೊ ಕ್ಯಾ ಯಹಾಂ ಉಸ್ಕಾ ಪೇಟ ನಹೀ ಭರೇಗಾ, ತೃಪ್ತಿ ನಹೀ ಹೋಗಿ. ಜಬ್ ಪಾತ್ರ ಕೋ ದೇನೆ ಸೆ ಪುಣ್ಯ ಹೋತಾ ಹೈ, ತೊ ಇನ್ಕೋ ದೇನೆ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಪುಣ್ಯ ನಹೀ ಹೋಗಾ, ಕ್ಯಾ ಯೇ ಆದ್ಮಿ ನಹೀ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಇನ್ಕೋ ದೇನೆ ಸೆ ಪಾಪ ಲಗೇಗಾ. ಅಪನಿ ಜೀವಿಕಾ ಚಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಅಪನಾ ಮತ್ಲಬ್ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಅಪನೆ ಲಿಯೆ ಲಿಖ ದಿಯಾ ಕಿ ಆದಿ ಆದಿ. ತಾಮಸ ಉದಾರಿತಂ, ಉಪರ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ದಿಯಾ ಜಾನೆ ವಾಲಾ ದಾನ ತಾಮಸ ಕಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಶಂಕಾ, ಗೀತಾ ಮೇ ತಾಮಸ ಕರ್ಮ ಕಾ ಫಲ ಅಧೋಗತಿ ಬತಾಯಾ ಹೈ, ಅಧೋಗಚ್ಛಂತಿ ತಾಮಸ 14-18. ಔರ್ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಮೇ ಕಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಜಿಸ್ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಭೀ ದಿಯಾ ವಾ ದಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಜೇನ ಕೇನ ವಿಧಿ ದೀನೆ ದಾನ ಕರೈ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇನ್ ದೋನೋ ಮೇ ವಿರೋಧ ಆತಾ ಹೈ. ಸಮಾಧಾನ, ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯ ಅಧೋಗತಿ ಮೇ ಜಾತೆ ಹೈ, ಯೇ ಕಾನೂನ್ ದಾನ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಲಾಗೂ ನಹೀ ಹೋತಾ, ಕಾರಣ ಕಿ ಧರ್ಮ ಕೆ ಚಾರ ಚರಣ ಹೈ, ಸತ್ಯಂ ದಯಾ ತಪೋ ದಾನಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ 12th ಸ್ಕಂದ 3rd ಅಧ್ಯಾಯ 18th ಶ್ಲೋಕ. ಇನ್ ಚಾರೋ ಚರಣೋ ಮೇ ಸೆ ಕಲಯುಗ ಮೇ ಏಕ ಹೀ ಚರಣ ದಾನ ಹೈ, ದಾನ ಮೇಕಂ ಕಲೌ ಯುಗೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನೆ ಕಹಾ, ಪ್ರಗಟ ಚಾರಿ ಪದ ಧರ್ಮ ಕೆ ಕಲಿಮೌ ಏಕ ಪ್ರಧಾನ, ಜೇನ ಕೇನ ವಿಧಿ ದೀನೆ ದಾನ ಕರೈ ಕಲ್ಯಾಣ. ಐಸಾ ಕಹನೆ ಕಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೀ ದಾನ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ ಉಸ್ಮೇ ವಸ್ತು ಆದಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಪನೆಪನ್ ಕಾ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ತಾಮಸ ದಾನ ಮೇ ಭೀ ಆಂಶಿಕ ತ್ಯಾಗ ಹೋನೆ ಸೆ ದಾನ ದೇನೆ ವಾಲಾ ಅಧೋಗತಿ ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ. ದೂಸರಿ ಬಾತ್, इस कलयुग के समय मनुष्यों का अंतःकरण बहुत मलिन हो रहा है, इसलिए कलयुग में एक छूट है कि जिस किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है, इससे मनुष्य का दान करने का स्वभाव तो बन ही जाएगा, जो आगे कभी किसी जन्म में कल्याण भी कर सकता है, परंतु दान की क्रिया ही बंद हो जाएगी तो फिर देने का स्वभाव बनने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इस दृष्टि से एक संत ने श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम इस श्रुति की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले पद का अर्थ तो यह है कि श्रद्धा से देना चाहिए, पर दूसरे पद का अर्थ अश्रद्धया अदेयम अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐसा न लेकर अश्रद्धया देयम श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिए, इस प्रकार लेना चाहिए। दान संबंधी विशेष बातें, अन्न जल वस्त्र और औषध, इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए, इसमें केवल दूसरों की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। इसमें भी देश काल और पात्र मिल जाए तो उत्तम बात, और न मिले तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है, जो रोगी है उसको औषध देनी है। इसी प्रकार कोई किसी को अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाना और उसे अभय दान देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए कि जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न जल के बिना मर रहा है तो उसको उतना ही अन्न जल दे कि जिससे उसके प्राण रह जाए, वह जी जाए। इस प्रकार उपर्युक्त चारों के दान में पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत आवश्यकता देखनी है। भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता है, वह तो दिए जाता है, क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है कि इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं, अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 18:46। तात्पर्य यह है कि भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। कर्मफल संबंधी विशेष बात, 11वें से 22वें श्लोक तक के इस प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ तप और दान आए हैं वे सब के सब देवी संपत्ति हैं, और जो राजस तथा तामस यज्ञ तप और दान आए हैं वे सब के सब आसुरी संपत्ति हैं। आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ तप और दान के फल के दो विभाग हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें भी दृष्ट के दो फल हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे राजस भोजन के बाद तृप्ति का होना तात्कालिक फल है, और रोग आदि का होना कालांतरिक फल है। ऐसे ही अदृष्ट के भी दो फल हैं, लौकिक और पारलौकिक। जैसे दंभ पूर्वक दंभार्थमपि चैवयत 17:12, सत्कारमान पूजा के लिए सत्कारमान पूजार्थम 17:18, और प्रत्युपकार के लिए प्रत्युपकारार्थम 17:21। ये किए गए राजस यज्ञ तप और दान का फल लौकिक है, और इसी लोक में इसी जन्म में इसी शरीर के रहते रहते ही मिलने की संभावना वाला होता है। स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ आदि का फल पारलौकिक होता है, परंतु राजस यज्ञ अभिसंधायतु फलम 17:12 और दान फलम उद्देश्य व पुनः 17:21 का फल लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही हो सकता है। इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले दूसरे अध्याय के 42वां 43वां और 9वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक। और केवल दंभ सत्कार मान पूजा प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ तप और दान करने वाले 17वें अध्याय का 12वां 18वां और 21वां श्लोक दोनों प्रकार के राजस पुरुष जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाले 17वें अध्याय के 13वां और 19वां श्लोक तामस पुरुष तो अधोगति में जाते हैं, अधोगच्छन्ति तामसा 14 का 18, पतन्ति नरके सुचौ 16 का 16, आसुरी स्वेव योनिषु 16-19, ततो यान्ति दमांगतिम 16 का 20। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं उनको स्वर्ग में भी दुख जलन ईर्ष्या आदि होते हैं। जैसे शतक क्रतु इंद्र को भी असुरों के अत्याचारों से दुख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके बदले में जलन होती है, वह भयभीत होता है, इससे पूर्व जन्म के पापों का फल भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो जाते हैं, पूत पापा, और वे यज्ञ के पुण्यों से स्वर्ग लोक को जाते हैं। फिर उनको दुख जलन भय आदि का होना किन पापों का फल है? इसका उत्तर यह है कि यह सब यज्ञ में की हुई पशु हिंसा के पाप का फल है। दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करने से अनेक तरह के दोष आते हैं। गीता माया सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता 18 का 48, अर्थात धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जब सभी कर्मों के आरंभ मात्र में भी दोष रहता है तब सकाम कर्मों में तो दोषों की संभावना ज्यादा ही होती है, और उनमें अनेक तरह के दोष बनते ही है। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायश्चित विधान यह सिद्ध करता है कि यज्ञ में दोष अवश्य होते हैं। अगर दोष न होते तो प्रायश्चित किस बात का? परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने पर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका कुछ न कुछ अंश रह ही जाता है। जैसे मैल लगे हुए वस्त्र को साबुन से धोने पर भी उसके तंतुओं के भीतर थोड़ी मैल रह जाती है, इसी कारण इंद्रादिक देवताओं को भी प्रतिकूल परिस्थिति जन्य दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति तो निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करके उन कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने से ही होती है। इसलिए निष्काम भाव सहित किए गए कर्म ही श्रेष्ठ हैं। सबसे बड़ी शुद्धि माने दोष निवृत्ति होती है कि मैं तो केवल भगवान का ही हूं, इस प्रकार अहंता पूर्वक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाने से। इससे जितनी जल्दी शुद्धि होती है और जैसी शुद्धि होती है उतनी कर्मों से नहीं होती। भगवान ने कहा है, सन्मुख होइ जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। तीसरी बात, गीता में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, तो उत्तर में भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव 3 का 37। तात्पर्य है कि रजोगुण से उत्पन्न कामना ही पाप कराती है, इसलिए कामना को लेकर किए जाने वाले राजस यज्ञ की क्रियाओं में पाप हो सकते हैं। राजस तथा तामस यज्ञ आदि करने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं, और सात्विक यज्ञ आदि करने वाले देवी संपत्ति वाले हैं। परंतु देवी संपत्ति के गुणों में भी यदि राग हो जाता है तो रजोगुण का धर्म होने से वह राग भी बंधन कारक हो जाता है। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। परिशिष्ट भाव, शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वो कल्याण ही करता है। तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ दान तप व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने की त्याग करने की आदत पड़ जाए, इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए।